एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी किताबें पढ़ना एक तूफान से गुजरने जैसा है। हम बात कर रहे हैं रूस के महान लेखक फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की।
और इस सफर में हमारी गाइड होंगी डेबोरा मार्टिन सेंस की किताब दोस्तोयेवस्की। ये किताब सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक एक्सरे है।
मनोवैज्ञानिक एक्सरे, वाह, ये अच्छा तरीका कहने का।
हाँ, मतलब जो दोस्तोयेवस्की के मन की गहराइयों तक जाता है।
बिल्कुल, और हमारा आज का मकसद भी बहुत साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक इंसान जो अपनी जिंदगी में इतनी मुसीबतों से गुजरा हो, कर्ज, बीमारी, यहां तक कि मौत की सजा,
सही कहा,
वो इन सबको ऐसी महान कला में कैसे बदल पाया, ऐसी किताबें कैसे लिख पाया जो आज भी लगभग 150 साल बाद हमें रास्ता दिखाती हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि क्या दुख हमें सिर्फ तोड़ता है या हमें कुछ बनाता भी है। दोस्तोयेवस्की का पूरा जीवन और लेखन इसी एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है।
तो चलिए शुरू करने से पहले उस शख्स के बारे में थोड़ा जानते हैं जिनके नजरिए से हम दोस्तोयेवस्की को समझ रहे हैं। लेखिका डेबोरा मार्टिनसन, वो कोई आम प्रोफेसर नहीं थी।
सही है,
बिल्कुल नहीं। मार्टिनसन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रूसी साहित्य के प्रोफेसर थीं और दोस्तोयेवस्की पर दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी में से एक मानी जाती थीं। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो दोस्तोयेवस्की को सिर्फ एक उपन्यासकार की तरह नहीं देखती थीं।
तो फिर किस नजरिए से देखती थी?
वो उन्हें एक मनोवैज्ञानिक, एक दार्शनिक और एक नैतिक चिंतक के रूप में देखती थी। उन्होंने सालों तक इस बात पर रिसर्च की कि शर्म, अपराध बोध और कबूलनामे जैसी भावनाएं
अच्छा
दोस्तोयेवस्की के किरदारों को कैसे बदलती हैं। उनके लिए रास्कोलनिकोव, जो क्राइम एंड पनिशमेंट का हीरो है, वो सिर्फ एक किरदार नहीं था।
तो क्या था? वो एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी था जो अपराध करने के बाद अंदर ही अंदर टूट रहा है।
और वो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तोयेवस्की सोसाइटी की अध्यक्ष भी थी। मतलब वो इस विषय में पूरी तरह डूबी हुई थी।
हाँ बिल्कुल।
तो उनकी किताब का मुख्य आइडिया क्या है, ये किस बारे में है?
मार्टिनसन का सबसे बड़ा तर्क ये है कि दोस्तोयेवस्की का पूरा जीवन और लेखन असल में नैतिक बनने की एक लगातार चलने वाली खोज थी।
नैतिक बनना
या एथिकल बिकमिंग, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसका मतलब क्या हुआ?
हाँ, सुनने में भारी है पर आइडिया बहुत सिंपल है। देखिए, दोस्तोयेवस्की ये कह रहे थे कि आप कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, आपका कैरेक्टर वो पत्थर की लकीर नहीं है।
अच्छा।
आप हर रोज हर फैसले से खुद को बना रहे हैं। ये एक तरह से राहत की बात है कि आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, लेकिन ये डरावनी भी है।
डरावनी क्यों?
क्योंकि हर पल की जिम्मेदारी आपकी है।
मतलब हम वो नहीं हैं जो हम थे, बल्कि हम वो हैं जो हम हर पल बन रहे हैं।
एकदम सही। और ये किताब दिखाती है कि कैसे दोस्तोयेवस्की की अपनी जिंदगी, उनकी निजी त्रासदियां, उनकी बीमारियां, उनके संघर्ष, वो सब उनके उपन्यासों के लिए एक तरह से कच्चा माल बने।
बिल्कुल, जैसे उनका जीवन और लेखन एक ही सिक्के के दो पहलू हों। उनकी जिंदगी एक प्रयोगशाला थी और उनके उपन्यास उस प्रयोगशाला के नतीजे।
तो चलिए इस प्रयोगशाला में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। कहते हैं कि बचपन इंसान की पूरी जिंदगी की नींव रखता है। दोस्तोयेवस्की के मामले में ये कितना सच था?
बहुत ज्यादा। उनका जन्म 1821 में हुआ और उनकी परवरिश गरीबों के लिए बने एक अस्पताल के कैंपस में हुई।
अस्पताल में?
हाँ। अब सोचिए, एक बच्चा जो रोज अपनी खिड़की से बीमारी, गरीबी और मौत देख रहा है। इंसानी दुख से उनका परिचय बहुत छोटी उम्र में हो गया था।
और उनके पिता का स्वभाव भी काफी सख्त था, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई। इस घटना ने उन पर क्या असर डाला होगा?
मार्टिनसन के मुताबिक इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। पिता से नफरत और फिर उनकी हत्या का अपराध बोध, ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसे वो जिंदगी भर सुलझाने की कोशिश करते रहे।
और यही थीम उनके सबसे महान उपन्यास द ब्रदर्स कारमाज़ोफ के केंद्र में है।
बिल्कुल, जहां बेटों पर अपने पिता की हत्या का शक होता है।
उनकी पहली ही किताब पुअर फोक ने उन्हें काफी मशहूर कर दिया था, लेकिन फिर वो एक क्रांतिकारी ग्रुप से जुड़ गए और यहीं से उनकी जिंदगी का रुख पूरी तरह बदल गया।
हाँ, और यही हम उस घटना पर आते हैं जिसने दोस्तोयेवस्की को हमेशा के लिए बदल दिया, साइबेरिया का आघात। 1849 में उन्हें और उनके साथियों को सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया
और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई।
हाँ, मौत की सजा। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन जैसा है।
क्या हुआ था?
उन्हें एक बर्फीली सुबह में फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया गया। मौत बस कुछ पल दूर थी, उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जीना शुरू कर दिया था।
और फिर?
और तभी एक संदेशवाहक घोड़े पर दौड़ता हुआ आया और बताया कि ज़ार ने उनकी सजा माफ करके साइबेरिया की जेल में बदल दी है।
मौत के मुंह से वापस आना, मैं तो सोच भी नहीं सकते कि किसी इंसान के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा।
इसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। मार्टिनसन इसे एक प्रतीकात्मक मौत और पुनर्जन्म कहती हैं। उस एक पल में दोस्तोयेव्स्की ने महसूस किया कि जीवन कितना कीमती है, ये एक तोहफा है।
और इसके बाद उन्हें 4 साल साइबेरिया के जेल में बिताने पड़े।
हाँ, खूंखार अपराधियों के साथ। वहां उन्होंने इंसान के मन के सबसे अंधेरे कोनों को देखा। उनके सारे किताबी आदर्श, वो सब टूट गए। उन्होंने पाया कि अच्छा और बुरा किसी समाज में नहीं होता,
बल्कि हर इंसान के दिल के अंदर एक लड़ाई चल रही होती है।
एकदम सही। और जेल में उन्हें पढ़ने के लिए सिर्फ एक किताब मिली थी, न्यू टेस्टमेंट। उसी किताब ने उनकी आस्था को एक नई, ज्यादा गहरी और जटिल शक्ल दी।
जेल से लौटने के बाद 1860 का दशक उनके महान उपन्यासों का दौर था। इसकी शुरुआत नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड से होती है।
हाँ, जिसे कई लोग उनके सभी महान उपन्यासों का एक तरह का घोषणा पत्र मानते हैं।
ऐसा क्यों?
क्योंकि इसका हीरो अंडरग्राउंड मैन एक तरह का एंटी हीरो है। वो हर तरह के तर्क और विज्ञान के खिलाफ विद्रोह करता है। वो कहता है कि तुम मुझे कितना भी समझा लो कि 2 और 2 4 होते हैं,
हाँ,
लेकिन मैं अपनी आज़ादी के लिए 2 और 2 को 5 कहने का हक रखता हूँ, भले ही ये मेरे लिए विनाशकारी क्यों न हो। ये इंसान की आज़ादी की एक चीख है।
और फिर आता है क्राइम एंड पनिशमेंट। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक आइडिया की मिस्ट्री है।
बिल्कुल। रास्कोलनिकोव सोचता है कि वो नेपोलियन जैसा महान आदमी है जिसे समाज के नियम तोड़ने का हक है,
और इसी आइडिया के तहत वो एक बूढ़ी औरत का कत्ल कर देता है।
हाँ, लेकिन कत्ल करने के बाद उसे महानता नहीं बल्कि एक भयानक अकेलापन महसूस होता है। वो अपनी माँ और बहन के साथ एक कमरे में बैठा है, पर उनसे लाखों मील दूर महसूस करता है। उसका दिमाग ही उसकी जेल बन जाता है।
और इसके बाद उन्होंने द इडियट लिखा, जो एक बहुत ही अनोखा प्रयोग था। क्या होगा अगर ईसा मसीह जैसे एक पूरी तरह नेक और मासूम इंसान को आज के चालाक और भ्रष्ट समाज में डाल दिया जाए।
और उपन्यास का दुखद अंत ये दिखाता है कि ये दुनिया उस अच्छाई को पचा नहीं पाती। उसकी अच्छाई भी तबाही का कारण बन जाती है, क्योंकि लोग या तो उसका फायदा उठाते हैं या उसे समझ ही नहीं पाते।
और फिर आता है उनका आखिरी दशक, जहां उनके विचार अपने चरम पर पहुंचते हैं, डीमन्स उपन्यास, जिसे उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी माना जाता है।
हाँ, और ये आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक न्याय या समानता जैसे महान विचार जब नैतिकता और ईश्वर से अलग हो जाते हैं
तो वे खतरनाक बन जाते हैं।
हाँ, वे तानाशाही और विनाश का रूप ले लेते हैं। ये वैचारिक कट्टरता के खतरों पर एक शक्तिशाली चेतावनी है।
और आखिर में उनका शिखर, द ब्रदर्स कारमाज़ोव, ये उपन्यास उनके जीवन भर के संघर्षों का सार है।
इसमें 3 भाई हैं जो असल में पूरी मानवता के 3 चेहरे हैं। दिमित्री, जो भावनाओं और जुनून से चलता है, इवान, जो तर्क, बुद्धि और विद्रोह का प्रतीक है, और अलोशा, जो आस्था, प्रेम और करुणा का प्रतीक है।
और ये 3 भाई एक ही इंसान के अंदर चल रहे संघर्ष को दिखाते हैं।
बिल्कुल। और इसी उपन्यास में द ग्रैंड इंक्विजिटर की मशहूर कहानी है।
कमाल की बात है कि दोस्तोयेव्स्की ने ईश्वर के खिलाफ शायद इतिहास का सबसे मजबूत तर्क अपने ही उपन्यास में रखा।
इसे एक्सपर्ट्स पॉलीफोनी कहते हैं, यानी बहुत सारी आवाजें। इसे ऐसे समझिए कि दोस्तोयेव्स्की एक लेखक नहीं बल्कि एक डिबेट मॉडरेटर हैं।
मतलब
वो मंच पर एक नास्तिक और एक संत को खड़ा करते हैं, दोनों को सबसे मजबूत तर्क देते हैं और फिर खुद पीछे हट जाते हैं। फैसला आपका है। वो आपको बताते नहीं कि क्या सोचना है, वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं।
इन सभी किरदारों और कहानियों को देखकर एक पैटर्न सा उभरता है। ऐसा लगता है कि कुछ खास आइडियाज थे जो दोस्तोयेव्स्की को सोने नहीं देते थे। सबसे पहला तो यही है कि दुख का कोई मकसद होता है।
हाँ, यूम का सबसे बड़ा थीम है। लेकिन मार्टिनसन एक चेतावनी भी देती हैं दोस्तोयेव्स्की के लिए, दुख अपने आप में अच्छा नहीं है, दुख बस एक मौका है।
मौका किस चीज का?
बदलाव का। कुछ किरदार जैसे रास्कोलनिकोव दुख को अपना कर बदलते हैं, लेकिन कई दूसरे किरदार दुख में और ज्यादा कड़वे और बर्बाद हो जाते हैं। तो सवाल ये नहीं कि दुख है, सवाल ये है कि आप दुख का करते क्या हैं।
दूसरा बड़ा आइडिया है आज़ादी। वो आज़ादी को एक बोझ की तरह देखते थे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम सब तो आज़ादी चाहते हैं।
हम सब आज़ादी चाहते हैं, लेकिन हम उसकी जिम्मेदारी से डरते हैं। दोस्तों, योस्की का मानना था कि चुनने की आज़ादी ही हमें इंसान बनाती है, लेकिन यही सबसे बड़ा बोझ भी है।
क्यों?
क्योंकि अगर हम कुछ भी चुनने के लिए आज़ाद हैं, तो हमारे हर फैसले का नतीजा हमारी जिम्मेदारी है। उनके कई किरदार इसी आज़ादी के बोझ तले दबकर टूट जाते हैं।
और तीसरा विषय है आस्था और शक की लड़ाई। उनके लिए विश्वास कोई आसान चीज नहीं थी।
बिल्कुल नहीं। उनके लिए विश्वास कोई अंधी श्रद्धा नहीं है। ये शक और सवालों के तूफान के बीच लगातार चलने वाली एक लड़ाई है। वो कहते थे कि सच्ची आस्था वही है जो सबसे बड़े संदेहों की आग से गुजरकर निखरती है।
और एक डर जो उनके उपन्यासों में बार बार दिखता है, वो है सिर्फ तर्क के आधार पर जीने का डर। उनका मानना था कि सिर्फ तर्क और विज्ञान पर आधारित समाज खतरनाक है।
हाँ, और ये एक बहुत अच्छा सवाल है। वो विज्ञान के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर इंसान सिर्फ दिमाग से जिएगा तो वो अपनी आत्मा, अपनी भावनाओं और करुणा से दूर हो जाएगा।
जैसा रास्कोल्निकोव और इवान कार्मजोव के साथ होता है।
बिल्कुल। उनका तर्क उन्हें सही गलत का फैसला करने की ताकत तो देता है, लेकिन उन्हें दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता से दूर कर देता है।
और इन सब अंधेरों के बावजूद एक उम्मीद की किरण भी है, प्रेम।
हाँ, इंसानी मन के सबसे काले कोनों को दिखाने के बाद भी दोस्तोयेवस्की का अंतिम संदेश प्रेम में था, खासकर वो जिसे वो सक्रिय प्रेम करते थे, यानी ऐसा प्रेम जो सिर्फ महसूस ना किया जाए बल्कि कर्मों में दिखाया जाए।
चलिए अब कुछ ऐसे विचारों पर नजर डालते हैं जो दस्तोयेवस्की के नजरिए का निचोड़ है। पहला विचार, एक बड़ी बुद्धि और गहरे दिल के लिए दर्द और पीड़ा हमेशा जरूरी होते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुख की तलाश करनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो लोग ज्यादा गहराई से सोचते और महसूस करते हैं, उन्हें दुनिया की पीड़ा भी ज्यादा महसूस होती है, लेकिन यही अनुभव उन्हें ज्यादा समझदार और दयालु बनाता है।
दूसरा विचार, जो सीधे उनके मौत वाले अनुभव से जुड़ा लगता है। इंसान के अस्तित्व का रहस्य सिर्फ जिंदा रहने में नहीं है, बल्कि जीने के लिए कुछ ढूंढने में है।
बिल्कुल। जीवन का मकसद सिर्फ सांस लेना या खाना पीना नहीं है, बल्कि एक ऐसा उद्देश्य खोजना है जो हमारे जीवन को मायने दे सके। बिना मकसद के जिंदगी एक बोझ है।
और एक आखिरी विचार जो मुझे बहुत गहराई तक छू गया, नरक क्या है? मैं कहता हूँ कि यह प्रेम करने में असमर्थ होने का दुख है।
उनके लिए सबसे बड़ी सजा कोई बाहरी आग या यातना नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिक अकेलापन है, दूसरों से जुड़ने की, प्रेम करने की क्षमता खो देना। जब आप किसी से जुड़ नहीं पाते तो आप एक जिंदा नरक में होते हैं।
तो इन सब गहरे विचारों का आज की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इनसे क्या सीख सकते हैं?
पहली और सबसे जरूरी बात है मनोवैज्ञानिक जटिलता को स्वीकार करना। हम सब विरोधाभासों से भरे हैं। हमारे अंदर अच्छा भी है और बुरा भी। दोस्तोयेवस्की हमें सिखाते हैं कि हमें खुद के और दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु होना चाहिए।
किसी को भी सिर्फ अच्छा या बुरा के खांचे में नहीं डाला जा सकता।
बिल्कुल। और दूसरी बात जो आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत जरूरी लगती है, वैचारिक कट्टरता के खतरे को पहचानना।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है।
दोस्तोयेवस्की की रचनाएं एक चेतावनी की तरह हैं। वे दिखाती हैं कि किसी भी इज्म या विचारधारा को आंख बंद करके अपनाना कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे। जब विचार इंसानियत से बड़े हो जाते हैं तो वह जुल्म का हथियार बन जाते हैं।
और आखिर में सक्रिय प्रेम का अभ्यास, ये मुझे बहुत व्यवहारिक विचार लगा।
हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक क्रिया है। इसका मतलब है किसी की मदद के लिए सच में आगे आना, दूसरों की बात धैर्य से सुनना और हमारे मतभेदों के बावजूद मानवीय संबंध बनाना। ये सिर्फ महसूस करने से कहीं ज्यादा कुछ करने पर जोर देता है।
तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख मैं अपने लिए ले जा रही हूँ, वो ये है कि जीवन की जटिलताओं और नैतिक दुविधाओं से भागना नहीं चाहिए। दोस्तोयेवस्की का अपना जीवन ये दिखाता है कि कैसे निजी संघर्ष और दुख भी ज्ञान और करुणा का स्रोत बन सकते हैं, अगर हम उनका सामना करने की हिम्मत दिखाएं।
और मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोस्तोयेवस्की कोई तैयार जवाब नहीं देते। वे अपने पाठकों को उन बड़े सवालों के साथ अकेला छोड़ देते हैं। ईश्वर है या नहीं? आज़ादी का क्या करें? दुख का क्या मतलब है?
उनकी महानता इसी में है कि वे हमें खुद सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ, उनका काम दिखाता है कि इंसान की पहचान उसके चुनावों से बनती है, और चाहे हम कितना भी भटक जाएं, बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है।
एक आखिरी सवाल मन में आता है, दोस्तोयेव्स्की खुद अपनी निजी जिंदगी में जुए की लत और कर्ज जैसी समस्याओं से जूझते रहे, क्या ये विरोधाभास उनकी महानता को कम करता है?
मेरे ख्याल से ये उनकी महानता को और बढ़ाता है। ये दिखाता है कि वो कोई संत नहीं थे जो उपदेश दे रहे थे, वो खुद एक संघर्षरत त्रुटिपूर्ण इंसान थे जो उन्हीं सवालों से जूझ रहे थे जिनके बारे में वो लिख रहे थे।
तो उनका लेखन इसलिए इतना सच्चा है?
हाँ, इतना सच्चा और शक्तिशाली है क्योंकि वो उनके अपने खून और आंसुओं से लिखा गया है। वो हमें दिखाते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।